तो पूछा, तुम्हें कामना भी नहीं है? मैं बोला, नहीं गुरुजी, अब हमारी कोई कामना नहीं है।
तुम्हें नहीं होगी, माताजी को बुलाओ, पूज्य गुरुजी ने कहा। मैंने अपनी धर्मपत्नी को बुलाया।
धर्मपत्नी से गुरुजी ने पूछा, क्यों माताजी, तुम्हें संतान पाने की कामना नहीं होती?
वे बोली, नहीं गुरुजी।
गुरुजी ने कहा, अगर मैं तुम्हें संतान दे दूं तो?
पत्नी ने कहा, गुरुजी अब आप संतान दे भी देंगे तो हमारी आयु 55 साल की हो गई है, 20 साल पालने पोसने में लगेंगे। पता नहीं 75 साल तक हम जिए या न जिए, पता नहीं उतना सुख मिले या नहीं। जब कामना थी तब पूरे देश में बहुत घूमे भटके, हर संत महंत के पास गए,
लेकिन अब अपनी कामना मिटा दी है। पूज्यवर खुश हुए, कहा, बहुत अच्छी बात। भोजन के बाद गुरुजी ने हमें गायत्री माता की मूर्ति के पास बिठाया और बोले, माताजी, मांगो, क्या मांगती हो?
पत्नी ने कहा, गुरुजी मुझे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य दे दो।
पूज्यवर ने मुझसे कहा, बाबू भाई, मांगो, क्या मांगते हो?
मैंने भी यही मांगा, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य।
पूज्यवर ने हम दोनों के सिर पर हाथ रखा और 10 मिनट तक रखा।
ऐसी दिव्य अनुभूति हुई कि संसार भर का सारा सुख वैभव उसके आगे मिट्टी के ढेले जैसा लगा, और जिसकी चर्चा सत्संग में सुनते आए थे, वह दिव्य आत्मानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद आदि की अद्भुत अनुभूति हुई।
उस दिन के बाद से ऐसा हुआ कि अपने आप संत, मुनि एवं ऋषि स्तर की आत्माएं हमारे घर आने लगी।
उनसे अमृत ज्ञान उपदेश मिलता रहा।
उनकी सेवा में समय बीता और पदार्थों से वैराग्य सा हो गया, तो खूब सारा दान पुण्य करते रहे।
अस्पताल खोला, डॉक्टर रखे, जो मांगा वह गुरुजी ने दे दिया। हम तो धन्य हो गए, अलसा गायब हो गया। श्री आर पी त्रिपाठी, उज्जैन।
1974 में अचानक मुझे पेट में भयंकर तकलीफ हुई।
चेक कराने पर पता चला कि पेप्टिक अल्सर है, और वह अल्सर इस स्थिति तक पहुंच चुका था कि कभी भी फूट सकता था।
डॉक्टर ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लो, यदि यह फूट गया तो आपकी जान भी जा सकती है।
मुझे तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि मैं 2 घूंट पानी भी नहीं पी सकता था।
कुछ ही दिनों में मेरा वजन 20 किलो कम हो गया था।
कानपुर के एक अनुभवी डॉक्टर से ऑपरेशन का समय भी ले लिया था। गायत्री परिवार के समर्पित कार्यकर्ता श्री मोतीलाल जी मेरे अच्छे मित्र थे। उन्होंने कहा, ऑपरेशन तो कराना ही है, पर क्योंकि हम गुरुजी से जुड़े हैं तो ऑपरेशन के पहले गुरुदेव के दर्शन कर लें तो अच्छा रहेगा।
हम गुरुदेव के दर्शन करने शांतिकुंज पहुंचे।
गुरुदेव ने देखते ही पूछा, सब ठीक ठाक है? मैंने कुछ नहीं बताया, पर मेरी पत्नी ने सब हाल बताया और कहा, गुरुदेव, ऑपरेशन कराना है, आपका आशीर्वाद चाहिए।
सुनकर गुरुदेव ने कहा, बेटा, मैं भी तो डॉक्टर हूँ।
अब तुम यहाँ आ गए हो तो ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा पूरा इलाज करता हूँ। यहाँ से रोज हर की पौड़ी पर स्नान करने जाना और रोज खूब पानी पीना, रोज शाम को मेरे प्रवचन में भाग लेना और कल मनसा देवी के दर्शन करना।
उस समय मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं 10 कदम भी नहीं चल पाता था, 2 घूंट पानी मुश्किल से पी पाता था।
1974 के समय में मनसा देवी के लिए पहाड़ पर चढ़कर जाना स्वस्थ आदमी को भी कठिन जान पड़ता था। उस पर भी आश्चर्य की बात, गुरुजी बोले, हर की पौड़ी पर दही बड़े और गोलगप्पे खाना। यह तो मेरे मन की बात थी, क्योंकि दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैंने गुरुजी के कहे अनुसार किया, हर की पौड़ी नहाने के लिए गया। मन में सोचा, जब गुरुदेव ने दही बड़े खाने के लिए कहा है तो खा ही लेता हूँ।
मैंने छककर दही बड़े खाए, मुझे कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन हम मनसा देवी की चढ़ाई भी चढ़ गए।
जैसा जैसा गुरुजी ने कहा था वैसा ही किया।
15 दिन का समय गुरुदेव ने दिया था।
कहा था, कहीं अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, सब कैंसिल कर दो, बाद में जाना।
15 दिन बाद जब गुरुदेव के पास गए तो उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम जाओ,
डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, कभी पेट में दर्द हो तो चले जाना। उस समय से आज तक मुझे पेप्टिक अल्सर नहीं है, अपने तप का एक अंश देंगे।
अंजार कच्छ की केशर बहन विश्राम भाई ठक्कर बहुत पुरानी कार्यकर्ता हैं। उन्हें 29 दिसंबर 1967 को गुरुजी ने एक पत्र लिखा जो इस प्रकार है। प्रिय पुत्री, तुम्हारा पत्र पढ़ते समय लगा कि तुम हमारे सामने ही बैठी हो, हमारी गोदी में खेल रही हो। शरीर से तुम दूर हो, किंतु आत्मा की दृष्टि से हमारे अति निकट हो। हमारा प्रकाश तुम्हारी आत्मा में निरंतर प्रवेश करता रहेगा और इसी जीवन में तुम्हें पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचा देगा। हम अपनी तपस्या का एक अंश तुम्हें देंगे और तुम्हें पूर्णता तक पहुंचा देंगे। हमारा सूक्ष्म शरीर 3 वर्ष बाद इतना प्रबल हो जाएगा कि बिना किसी कठिनाई के कहीं भी पहुंच सके और दर्शन दे सके। जो परिजन केशर बहिन को जानते हैं वे उनकी भाव समाधि की स्थिति से भी भली भांति परिचित हैं। गुरुदेव हमारे शिव शंकर वरदाय। श्री गोविंद पाटीदार, शांति कुंज।
विगत 16 से 20 अप्रैल 1970 की तिथियों में खरगोन ग्राम ये गांव में 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन था।
पूज्य गुरुदेव इस समारोह में पधारे थे। उन्हीं दिनों उनसे मंत्र दीक्षा ली थी। अपनी हिमालय यात्रा के बाद पूज्य गुरुदेव ने लौटकर शांतिकुंज हरिद्वार में साधना आरण्यक की स्थापना की। जीवन साधना सत्रों की श्रृंखला चली। 1976 के एक सत्र में वहां जाने का सौभाग्य मुझे भी मिला।
उनसे भेंट करने के लिए एक दिन उनके कमरे में गए।
अन्य परिजन भी थे। सबसे बारी बारी से पूज्य गुरुदेव ने कुशल समाचार पूछे, मेरी कुशलता भी पूछी। मैंने कहा, गुरुदेव और तो सब ठीक है, परंतु एक दुख है। उन्होंने करुणापूर्वक कहा, बेटा जल्दी बता क्या बात है। मैंने बताया, पिताजी मेरे बड़े भाई को हमेशा बांध कर रखना पड़ता है।
वे पागल हैं। पूज्य गुरुदेव ने क्षण भर के लिए आंख बंद की और कहा, बेटा यह पूर्व जन्म के किन्हीं कर्मों के कारण है, इस प्रारब्ध को इसी जन्म में काट लेना अच्छा है,
परंतु उसे इतना जरूर ठीक कर देंगे कि वह खुला रह सके। मेरा हृदय भर आया, गला रुंध गया और आंखों से आंसू झरने लगे। गुरुदेव ने मेरे सिर पर हाथ फिराया और कहा, बेटा सब ठीक ही होगा, चिंता मत करो, परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। 9 दिनों के शिविर के पश्चात घर लौटना हुआ। ठीक 20 दिन बाद बड़े भाई अपने आप खुल गए। पूछने पर बताया कि जाने कौन सफेद खादी के कपड़े पहने बाबा आए थे।
उन्होंने दूर से मेरे ऊपर बर्फ फेंक दी, उसी से सब जंजीरें अलग हो गईं। आज भी मेरे बड़े भाई बंधनों से मुक्त अवस्था में प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं। कभी कभार कई महीनों में एकाध हल्का सा दौरा आ जाता है, पर फिर ठीक हो जाते हैं। बड़े भाई के दोनों बालक जी
गजानंद एवं जी
रमेश चंद्र इंजीनियर के पद पर हैं तथा सपरिवार इंदौर ही रहते हैं। मैं अपने परिवार सहित 12 जून 1984 से गुरुदेव के चरणों में शांति कुंज आ गया।
पूज्य गुरुदेव वरदाय ही थे।
अब तो बराबर यह चिंतन रहता है कि उनके अनुदानों का ऋण चुकाने में ही जीवन के शेष दिन बीते।
शब्द क्या वरदान थे वे वचन। श्री मोतीलाल स्वर्णकार, उज्जैन। सन 1964-65 में गुरुदेव नलखेड़ा जिला शाजापुर में आए थे। तब मैं माध्यमिक शाला नलखेड़ा में क्राफ्ट टीचर था। 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ आयोजित किए गए थे।
घर पर ही गुरुदेव के ठहरने का इंतजाम था।
एकांत पाते ही गुरुदेव ने मुझसे मेरी समस्या पूछी।
मैंने कहा, गुरुदेव 5 कन्याएं हैं, 1 पुत्र है, इनकी शिक्षा दीक्षा तथा विवाह संस्कार करना है,
नलखेड़ा से स्थानांतरण करवा दीजिए। गुरुदेव ने कहा, 9 दिन में उज्जैन ट्रांसफर भी ती आई
में होगा।
वहाँ उज्जैन में कोई शाखा नहीं है। वहाँ सुरेश नारायण मेहता डी ई हो व जनार्दन देशमुख से मिलकर शाखा स्थापित कर युग निर्माण योजना का कार्य करना। बात बेहद अविश्वसनीय थी।
भला किसी व्यक्ति का कुछ ही दिनों के अंतर से 2 बार स्थानांतरण कैसे हो सकता था,
किंतु गुरुदेव की महिमा, 9 दिन के अंदर ही भी ती आई
उज्जैन में मेरा ट्रांसफर हो गया।
फिर मैं उज्जैन में ही रहा। यहाँ 5 कन्याओं व 1 पुत्र की ग्रेजुएशन तक शिक्षा पूरी हुई।
सभी की बिना दहेज के शादी कराए।
उज्जैन से ही रिटायर हुआ। गायत्री परिवार की शाखा सन 1964 में स्थापित की। गुरु कृपा से मेरा हर कार्य निर्विघ्न रूप से पूरा होता रहा है।
उनके वचन मेरे जीवन में वरदान बनकर आए।
24,000 मंत्र के एक लघु अनुष्ठान का पुण्य दिया है। एक बार 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ के कार्यक्रम हेतु खास चौक उज्जैन में गुरुदेव श्री इंदुमल लिखानी के घर ठहरे थे।
रात के वक्त जब मैं गुरुजी के चरणों के पास ही सोया हुआ था कि अचानक मेरी पसली में भयंकर दर्द उठा।
मैं कराहने लगा। गुरुजी उठे और पूछा, मोतीलाल कराह क्यों रहे हो। मैंने बताया, गुरुदेव पसली में भयंकर दर्द हो रहा है। गुरुदेव बोले, मेरे पास आ। मैं उठकर गुरुजी के पास गया। उन्होंने जहां दर्द हो रहा था वहां हाथ फिराया और पल भर में मेरा दर्द गायब हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुदेव ने मुझे प्राण दान दिया हो। फिर गुरुदेव ने कहा, मैंने तुझे 24,000 गायत्री मंत्र के एक लघु अनुष्ठान का पुण्य दे दिया है।
घर जाकर अनुष्ठान कर लेना और मुझे सूचना कर देना, उसकी शक्ति मैंने तुझे दी है।
कमाल आशीर्वाद का। श्रीमती शांता सोनी, इंदौर। सन 1966-67 में पूज्य गुरुदेव सिंहस्थ पर्व पर उज्जैन पधारे। लौटते समय प्रातः 6 बजे मेरे कालिया देह निवास से साइकिल रिक्शे में बैठकर जा रहे थे। मार्ग में श्री गोपाल जी सोनी का घर था। उन्होंने व उनकी पत्नी ने फूलमालाओं से पूज्य गुरुदेव का स्वागत किया। जब गुरुदेव ने सबकी कुशलक्षेम पूछी तो उनकी पत्नी ने रोते हुए कहा, गुरुजी मेरी गोद खाली है।
जो संतान होती है 2-4 माह में मर जाती है। फिर वह फूट फूट कर रोने लगी।
पूज्य गुरुदेव द्रवीभूत हो उठे और उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद स्वरूप आज उनके दो पुत्र हैं, जो स्वस्थ, सुखी और संपन्न हैं। जो की कृपा पंगु गिरी लांग गई। श्री दयाशंकर रस्तोगी, शाहजहांपुर, प्र शांतिकुंज में उन दिनों प्राण प्रत्यावर्तन सत्र चल रहे थे। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव की तप ऊर्जा से नित नए अनुदानों वरदानों की सृष्टि व वृष्टि हो रही थी। उन्हीं दिनों जाड़े की एक दोपहर में उत्तर प्रदेश के खीरी लखीमपुर जिले के मोहम्मदी कस्बे के प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी श्री दयाशंकर रस्तोगी अपनी पत्नी श्रीमती शकुंतला रस्तोगी के साथ पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ उनका विकलांग पुत्र सुनील भी था। गुरुदेव ने उन्हें प्रेम से बिठाने के साथ घर के हाल समाचार पूछे। उत्तर में सुनील की माँ श्रीमती शकुंतला ने बताया, गुरुदेव, मेरे तीन लड़के सुनील, इंद्रकिशोर व आनंद एवं दो लड़कियां आदर्श व विद्युत्तमा हैं। यह सुनील ही सबसे बड़ा है। इसी के साथ ही उन्होंने सुनील के विकलांग होने की सारी कथा सुना डाली। श्री दयाशंकर जी ने बताया, गुरुजी, यह लड़का जन्म के समय तो स्वस्थ सामान्य था,
पर जन्म के 15वें दिन इसे तीव्र ज्वर हुआ, तब से यह हाल हो गया है।
चिकित्सा के सारे प्रयास भी निष्फल गए। सारी बातें सुनने के बाद गुरुदेव ने सुनील की ओर देखा। 11 वर्षीय इस बालक के चेहरे पर एक अद्भुत भोलापन था।
उसकी आंखों में एक अनूठी चमक थी। गुरुदेव ने इन सबको समझाते हुए कहा, जन्म जन्मांतर के कर्म प्रारब्ध का रूप लेते हैं और यह प्रारब्ध ही अच्छी बुरी परिस्थितियों के रूप में प्रकट होता है।
बुरे प्रारब्ध को धैर्यपूर्वक सह जाना तप है।
तुम्हारा बच्चा यही तप कर रहा है, पर तुम निराश न हो, हम इसे प्रतिभा का वरदान देते हैं। यह विकलांग होने के बावजूद किसी पर बोझ नहीं बनेगा, स्वयं कमाकर खाएगा और तुम लोगों का भी नाम उज्ज्वल करेगा।
इसके कारण लोग तुम्हें और इसके भाई बहनों को पहचानेंगे। गुरुदेव की बातें सुनकर सुनील के माता पिता को आश्चर्य हुआ, पर उन्हें गुरुदेव की तप शक्ति पर श्रद्धा थी और सचमुच घर पहुंचकर सुनील में चित्रकला का अंकुरण हुआ। पूज्य गुरुदेव का वरदान साकार होने लगा। उसकी बनाई पेंटिंग्स चर्चित एवं प्रशंसित होने लगी। रेडियो एवं T0V0 पर उसकी वार्ताएं प्रसारित हुई। समाचार पत्र समय समय पर उसके व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व को प्रकाशित करने लगे। श्री दयाशंकर रस्तोगी एवं शकुंतला रस्तोगी तो इस गुरु कृपा पर भाव विभोर हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी एक पुत्री का विवाह शांतिकुंज के ही किसी योग्य कार्यकर्ता से करेंगे। सन 1994 में उन्होंने ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में कार्यरत श्री सुरेश वर्णवाल से अपनी कन्या विद्युत्तमा का विवाह किया।
गुरुदेव की कृपा के प्रति निष्ठावान सुनील रस्तोगी अपनी अनुभूति महात्मा सूरदास के इन शब्दों में बयान करते हैं।
जो की कृपा पंगु गिरी लांग गई, मात्र आशीर्वाद से बच्ची स्वस्थ हुई। श्री वर्दीचंद चौधरी, सुवासरा मंडी मंदसौर। मेरी लड़की निर्मला मोदी की डिलीवरी हुई थी, जिसमें उसका दिमाग पागल जैसा हो गया था, फलतः मैं इलाज हेतु भटकता फिरा। 5 माह तक 25 डॉक्टरों को दिल्ली में दिखाया, किंतु वे भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। एक दिन रात्रि को सोते हुए गुरुदेव की याद आई और सुबह ही मैं शांतिकुंज पहुंचने हेतु रवाना हो गया। शांतिकुंज में पहुंचकर गुरुदेव से मिला। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची ठीक होकर 15 दिन पश्चात नोएडा से मुझसे मिलने स्वयं आवेगी। मेरी बच्ची गुरुदेव की वाणी से स्वस्थ हो गई व 15 दिन पश्चात गुरुदेव से स्वयं मिलने गई। इस बीमारी के दौरान उसने बड़ी तादाद में गायत्री मंत्र लेखन किया। आज मेरी बच्ची पूर्ण स्वस्थ व प्रसन्न है।
यह गुरुदेव की कृपा का ही फल है।
ऋण लौटाने हेतु मजबूर किया। चेन्नई के श्री रामलाल खंडेलवाल जी ने अपने 10 लाख रुपये एक मुसलमान व्यक्ति को ब्याज पर दे दिए। फिर वे जब भी अपने पैसे उनसे वापस मांगते, वह चाकू दिखाकर धमकी दे देता। वह किसी प्रकार भी पैसा लौटाने को तैयार नहीं था। रामलाल जी सोचने लगे कि अब तो हमारे 10 लाख रुपये डूब गए,
अब हमें हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा।
संयोग से शांतिकुंज की टोली वहां चेन्नई पहुंची।
उन्होंने टोली के भाइयों से निवेदन किया कि एक व्यक्ति मेरे 10 लाख रुपये वापस नहीं कर रहा है, आप गुरुजी से निवेदन करना कि मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए।
शांतिकुंज के भाइयों ने आश्वासन दिलाया कि आप चिंता न करें, हम गुरुजी से निवेदन करेंगे। कुछ ही दिनों में उस मुसलमान व्यक्ति को एक भयावह स्वप्न हुआ। उसमें निर्देश मिला, तुमने जो 10 लाख रुपये लिए हैं उन्हें ब्याज सहित वापस कर दो। वह सुबह सुबह तुरंत उनके सारे पैसे ब्याज सहित वापस करने पहुंच गया।
उनके घर में गुरुदेव के चित्र को देखकर उसने स्वप्न के विषय में बताया और क्षमा याचना कर लौट गया। इस प्रकार गुरुजी पग पग पर अपने बच्चों के हितों की भी रक्षा करते रहते हैं।
ऑपरेशन टला। राजस्थान के एक कार्यकर्ता अपनी कन्या के ऑपरेशन के लिए 13,000 रुपये लेकर जयपुर जा रहे थे। अचानक मन में भाव उठने लगे, गुरुजी, कन्या के ऑपरेशन की जरूरत ही न पड़े। रास्ते में ही कन्या ठीक हो जाए।
ऑपरेशन होने से शरीर पर निशान रह जाते हैं, फिर उसकी शादी के समय कहीं कोई दिक्कत ना आए।
अगर ऑपरेशन ना हो तो ये पूरे रुपये जो मैंने ऑपरेशन के लिए लाए हैं शांतिकुंज में दान कर दूंगा। उनके प्रार्थना के शब्द पूज्य गुरुजी तक पहुंच गए। वे जयपुर पहुंचकर ऑपरेशन के पूर्व पुनः टेस्टिंग के लिए कन्या को अंदर ले गए। इस बार जो भी मेडिकल रिपोर्ट आई कुछ समय पहले कराए गए टेस्ट से उलट सब नॉर्मल थी। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अंतर्हृदय से पूज्यवर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किए और अपने आप से किए वायदे के अनुसार उन्होंने पूरे 13,000 रुपये शांतिकुंज में दान कर दिए। समाज निंदा नहीं होने दूंगा। श्री कृष्ण अग्रवाल कहते हैं कि मेरे चाचा श्री दाताराम को आंख व नाक के पास फोड़ा हो गया था।
लोग उसे कोढ़ कहते थे।
उनका पैर सुन्ना हो गया था।
चप्पल पहनते तो चप्पल कब पैर से निकल गई है, होश ही नहीं रहता।
गुरुजी के पास गए, उन्हें बताया। उन्होंने कहा बेटे मेरे रहते समाज निंदा नहीं होने दूंगा, उसे कोढ़ नहीं होगा, तू निश्चिंत रह। और ऐसा ही हुआ। वे उसके बाद स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर बहुत दिन जिए। जिनने भी गुरुवर का काम किया उनके पूरे परिवार का पूज्यवर ने ध्यान रखा, सभी कृतार्थ हुए।
वे अक्सर कहते भी रहे तू मेरा काम कर, तेरा काम मैं करूंगा।
नेत्र ज्योतिदान, श्री विश्व प्रकाश त्रिपाठी, शांतिकुंज।
उन दिनों की बात है जब मैं अल्मोड़ा में पोस्टेड था।
उस कॉलेज के वीसी साहब की एक आंख की ज्योति चली गई थी।
मैंने उन्हें गुरुदेव के विषय में बताया और उन्हें टैक्सी से शांतिकुंज ले आया।
पूज्यवर से सब बात बताई और निवेदन किया। वे कृपालु तो थे ही, विनती मान गए। स्वयं दीक्षा की मुद्रा में बैठे वी सी साहब को भी बैठाया।
थोड़ी देर में उनके नेत्रों में करंट सा प्रवाहित हुआ और उनकी नेत्र ज्योति आ गई। उन्होंने स्वयं को धन्य माना तथा मिशन के कार्यों में सहयोग करते रहे, मेरे कथन का मान रखा।
श्री राजेंद्र अग्रवाल, बिलासपुर। दिनांक 12 मई 1980 को पूज्य गुरुदेव सरकंडा प्रज्ञा पीठ के उद्घाटन हेतु बिलासपुर आए हुए थे। रात्रि विश्राम हमारे घर पर ही किया था।
रात लगभग 8 बजे मेरे मित्र श्री शिवकुमार चतुर्वेदी आए और मुझसे कहा कि मेरे पिताजी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वे पिछले कई दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती थे।
मैंने अपने दोस्त से कहा आपके पिताजी को कुछ नहीं होगा, मैं गुरुजी से आशीर्वाद लेकर आता हूँ। उसके पश्चात गुरुजी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचा, पूरी घटना की जानकारी दी। गुरुजी ध्यानस्थ हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने आशीर्वाद देने से मना कर दिया, बोले बेटा उनका समय पूरा हो गया है, परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारी भी पूरी हो गई है।
उनके आशीर्वाद देने से मना करने के पश्चात मेरी आंखों में आंसू आ गए।
सोचने लगा दोस्त को क्या जवाब दूंगा, मैंने तो ठीक हो जाएंगे कह दिया था,
भला विधाता से मन की बात कैसे छिपी रह सकती थी।
मेरे आंसू देखकर उन्होंने कहा बेटे तूने मुझसे पूछे बिना ही उसे ठीक होने के लिए कह दिया, और पुनः मौन हो गए।
थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा अच्छा तूने कह ही दिया है तो उन्हें एक वर्ष कुछ नहीं होगा,
जा मैंने एक वर्ष हेतु जीवन दान दिया।
इस प्रकार गुरुजी ने मेरे कथन का मान रख लिया और उन्हें एक वर्ष के लिए ठीक कर दिया।
हम सबने देखा उनकी स्थिति दिनों दिन सुधरने लगी, वह ठीक हो गए। ठीक एक वर्ष बाद उनकी तबीयत पुनः बिगड़ी और उन्होंने शरीर त्याग दिया। ऐसे थे हमारे पूज्य गुरुदेव, इतने कृपालु कि हमारे वचन का मान रखने के लिए एक वर्ष हेतु अपने विधान को रोक दिया, किंतु हमारे वचन को असत्य नहीं होने दिया।
उन्होंने हमें जितना दिया उसका एक कण भी हम नहीं चुका सकते।
गुरुदेव का परिचय मेरे पाठ्यक्रम में शामिल हुआ। अरुण कुमार शैव्य, शुजालपुर। दिनांक 13 से 16 अप्रैल 1974 को प्रथम बार हरदा में गायत्री महायज्ञ था। बैतूल से श्री भुवनेश्वर जी उपाध्याय इस आयोजन को संपन्न करने आए, सहयोगी के रूप में मैं भी उनके साथ आया था।
विरोधी मानसिकता के लोगों ने वहां इन्हीं तारीखों में विष्णु महायज्ञ रखा। हमारे महायज्ञ को उन्होंने शूद्रों का यज्ञ कहकर नगर में प्रचारित करवा दिया।
स्थानीय कार्यकर्ता निराश थे, चंदा एकत्रित करना बड़ा कठिन था, गुरुदेव स्वयं हमारी परीक्षा ले रहे थे।
16 अप्रैल को ही मेरा सागर में M.A.
संस्कृत अंतिम वर्ष का एक पेपर मौखिक परीक्षा का था। अब परीक्षा की घड़ी यहाँ भी थी और वहाँ भी। सायंकाल प्रवचन में पंडित समुदाय उपस्थित था। उन लोगों ने विरोध करने की नीयत से आड़े तिरछे प्रश्न किए।
जीवन में प्रथम बार प्रवचन करने में मंच पर बैठा।
इस दौरान उनके प्रश्नों का उत्तर शंका समाधान सप्रभाव प्रस्तुत किया। उसी समय रात्रि को गोरखपुर एक्सप्रेस से सागर रवाना हुआ। यज्ञ की व्यस्तता के कारण पढ़ाई न हो सकी थी। भीड़ में सारी रात रेल के दरवाजे पर खड़े खड़े जागते रहे एवं परीक्षा में आने के लिए सारी रात गुरुदेव का आह्वान करते रहे। मैं 3 घंटे देरी से विश्वविद्यालय पहुंचा। संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रामजी उपाध्याय मेरे परीक्षक थे।
वे देर से आने के कारण नाराज हुए।
मैंने क्षमा याचना की एवं कहा, सर मैं हरदा में गायत्री महायज्ञ में गया था। यज्ञ करते हो? हाँ। क्यों करते हो?
वर्ण एवं संस्कार कौन कौन से हैं? आपके गुरुदेव कौन हैं? उनका जीवन परिचय दीजिए, वे किस तरह युग निर्माण करना चाहते हैं? मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर बड़ी कुशलता से दिया।
वे हंसते हुए बोले, आपकी परीक्षा समाप्त हुई। फिर उन्होंने अलमारी से एक पुस्तक निकालकर मुझे भेंट की। उनकी स्वरचित पुस्तक का नाम द्वासुपरनाक था। इसे ध्यान से पढ़कर लिखना, गुरुदेव की युग निर्माण योजना को हमने कृष्ण सुदामा नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया है।
बाद में मुझे एहसास हुआ कि गुरुदेव ही परीक्षक के मस्तिष्क में प्रवेश कर मेरी परीक्षा ले रहे थे।
रात भर मैंने उनका आह्वान जो किया था। अब तक गुरुदेव का जीवन परिचय किसी भी विश्वविद्यालय के कोर्स में नहीं था, लेकिन मेरी व्यक्तिगत परीक्षा के कोर्स में अवश्य था। पुस्तक में नहीं पढ़ा, वह ज्ञान मिला। श्री शिव पूजन सिंह, शांति कुंज।
घटना सन 1976 की है।
एक लड़का मुंबई से आया था।
मैं भी शिविर में था। तब कभी भी कोई भी गुरुदेव के पास मिलते बैठते थे।
मैं भी ऊपर ही बैठा था कि वह लड़का आया। बोला, गुरुजी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। गुरुदेव ने पूछा, किस पर? वह बोला, सुषुना नाड़ी पर। इतना सुनते ही पूज्य गुरुदेव ने सुषुना नाड़ी की पूरी व्याख्या कर दी। वह लड़का हतप्रभ होकर देखता रह गया। उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर गदगद हो उठा और गुरुदेव को प्रणाम कर नीचे आकर कहने लगा, मैंने आज तक जो ज्ञान पुस्तकों में कहीं नहीं पढ़ा, वह अद्भुत ज्ञान गुरुजी ने मुझे दे दिया। ऐसे परम ज्ञाता थे पूज्यवर। जिसने जिस विषय पर समाधान प्राप्त करना चाहा, वह उसे प्राप्त हुआ। ऐसे ही एक बार एक वैज्ञानिक अणुविज्ञान पर रिसर्च कर रहे थे। वे अपनी व्यक्तिगत समस्या पर आशीर्वाद लेने आए थे।
पूज्य गुरुदेव ने उनसे उनके कार्य के विषय में पूछा तो उस विषय पर थोड़े से ही पलों में गुरुजी ने इतना सारगर्भित ज्ञान दे दिया जो पुस्तकीय ज्ञान से परे का ज्ञान था।
वे पूज्यवर की अतीन्द्रिय क्षमता एवं दिव्य ज्ञान संपदा से अत्यधिक प्रभावित हुए। फिर गुरुजी से पूछा, गुरुजी, यह तो वैज्ञानिकों का विषय है, आपको इतना सब कुछ कैसे पता? गुरुजी बोले, बेटा,
अध्यात्म में सब कुछ है।
जहाँ विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है, अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है।
वह सबसे बड़ा विज्ञान है।
माताजी का आशीर्वाद। श्री ओम प्रकाश गुप्ता, इंदौर। प्रसंग नंदनवन यात्रा के समय का है। शपथ समारोह के ठीक बाद मैं और मेरे 4 अन्य साथी माताजी से नंदनवन यात्रा के लिए आशीर्वाद लेने गए। माताजी ने मुस्कराते हुए नंदनवन यात्रा सकुशल होने के लिए आशीर्वाद दिया।
नंदनवन से तपोवन के लिए जब हम चल रहे थे कि अचानक मेरा पैर फिसलने की वजह से मैं नीचे गहरे हिमकुंड में फिसलने लगा।
4-5 फीट नीचे फिसलने के बाद ऐसा लगा मानो किसी ने सहारा देकर रोक दिया हो।
तभी हमारे साथ चल रहे गाइड ने मुझ तक पहुंचने का रास्ता बनाया और मुझे मौत के मुंह से वापस ऊपर खींच लिया।
वास्तव में माताजी के आशीर्वाद की वजह से ही हमारी हिमालय यात्रा सकुशल हो पाई व मैं मौत के मुंह से वापस लौट सका। गठान गायब हो गई।
नीता एम
भट्ट, इंदौर।
बात उन दिनों की है जब गुरुदेव झाबुआ के कार्यक्रम में आए थे।
मैंने पूज्यवर के प्रथम दर्शन तब किए थे। सौभाग्य से मेरा विवाह गायत्री परिवार में ही हुआ। बात फरवरी 1992 की है। हमारे यहाँ द्वितीय पुत्र का जन्म हुआ। जन्म से ही बेटे को एक गठान थी।
चिकित्सकों ने उसे हॉर्निया की गठान बतलाकर ऑपरेशन करने की सलाह दी। बच्चा अभी 3 माह का ही था और डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए कह रहे थे।
मैं सोच सोच कर परेशान थी। इस दौरान पतिदेव ने कहा, क्यों नहीं यह बात माताजी से कही जाए। हम लोग शांतिकुंज हरिद्वार गए।
दोपहर में 1:00 बजे जब माताजी से मिलने गए, तब हम लोगों ने बच्चे के कष्ट के बारे में माताजी से कहा।
माताजी बोली, क्या बेटा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? मैंने कहा, हाँ माताजी, इसीलिए हम चिंतित हैं। माताजी बोली, बेटा तुमने शांतिकुंज के डॉक्टरों को दिखाया क्या? जा बेटा जा, नीचे शांतिकुंज के डॉक्टर बैठे हैं, उन्हें दिखा दे, सब ठीक हो जाएगा। इधर माताजी के श्रीमुख से शब्दों का निकलना हुआ और तुरंत ही बच्चे की गठान गायब हो गई। घर आकर भी हम लोग ढूंढते रहे, गठान कहाँ गई,
किसका ऑपरेशन करना है।
ऐसे वरदान बांटती थी माताजी, जिनसे हम भी धन्य हुए। माताजी की दिव्य दृष्टि।
श्री डी
पी सिंह, श्री बी के शर्मा, इंदौर।
बात सन 77-78 की है।
इंदौर से हम लोग हरिद्वार जा रहे थे। हमारे एक साथी श्री कृष्ण राठौर, जो कि स्वभाव से गर्म और व्यवहार में नर्म थे, नागदा स्टेशन पर बिना बताए उतरकर भीड़ को देखने लगे।
उनसे कहा भी गया था कि यहाँ उतरना नहीं, क्योंकि डिब्बे कटकर दूसरी गाड़ी में लग जाते हैं और गाड़ी रवाना हो जाती है। बताने के बावजूद वे उतरे और गाड़ी रवाना हो गई। वे वहीं छूट गए। हम सब लोग परेशान होने लगे, पर कर क्या सकते थे।
कोटा पहुंचे, वहां उद्घोषणा हो रही थी कि यदि डी पी
सिंह सुनते हो तो उनका एक साथी श्री कृष्ण सिंह राठौर नागदा में ही रह गया है।
फरवरी का महीना था, ठंड खूब पड़ रही थी,
कोई रुकने को तैयार नहीं था।
आखिर गाड़ी चलती गई और हरिद्वार पहुंची। नियमानुसार प्रथमतः माताजी के दर्शनों को गए। जैसे ही चरण स्पर्श किए माताजी ने कहा, बेटा एक को कहाँ छोड़ आए। मैंने सोचा माताजी को हमारे किसी साथी ने पहले ही कह दिया होगा। मैंने उत्तर दिया, माताजी वह नागदा रेलवे स्टेशन पर रह गया, हमने पहले ही उसे उतरने से मना किया था। माताजी गंभीर होकर बोली, अच्छा बेटा वह आ जाएगा। श्री राठौर दूसरी गाड़ी से अगले दिन सुबह आ गए।
4 बजे की प्रार्थना में हमें मिले। हम लोगों ने भगवान को धन्यवाद दिया और माताजी की बात बताई।
राठौर जी ने कहा, जब मैंने देखा कि गाड़ी चल दी है तो मेरे होश उड़ गए। उसी दरमियान मुझे गुरुजी और माताजी के दर्शन हुए।
क्या अद्भुत संयोग था कि इतने में दूसरी गाड़ी आ गई।
शायद वह लेट थी और मैं उसमें चढ़ गया।
हम सब उनके मुंह की ओर देखते रह गए। माताजी के पूछने व उनकी गंभीरता का रहस्य भी हमें समझ में आ गया था।
बच्चा बोल उठा, श्री श्यामलाल बंसल, असंध।
मेरे बच्चे के सिर की हड्डियों में बचपन से ही गड़बड़ी थी। पी जी आई चंडीगढ़ में डॉक्टरों ने सी टी स्कैन करके ऑपरेशन के लिए बोल दिया था,
जिसमें 1,00,000 रुपया होना था।
प्राणों का भय अलग से था।
उस समय मैं मिशन से नया नया जुड़ा था। मैं और जैन साहब बच्चे को लेकर माताजी के पास पहुंचे।
हम पंक्ति में खड़े थे।
अचानक बच्चा बोला, पापा जी अब मुझे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा, जबकि उसकी आयु केवल 3 वर्ष की थी।
सुनकर हमें बहुत हैरानी हुई।
जब हमने माताजी को सब समस्या बताई तो माताजी ने बच्चे के सर पर हाथ फेरा और ठीक होने का आश्वासन दिया।
लौटने पर जब पुनः सी टी
स्कैन हुआ तो डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए। बीमारी छू मंतर हो चुकी थी। यह सब माताजी की कृपा ही थी। 12
भागीदारी की नफे में रहे। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने एक प्रवचन में कहा है कि बेटा मैं किसी का ऋणी नहीं रहूंगा।
वे अति विनम्र होकर कहते हैं, जिनने भी हमारी कुछ सेवा सहायता की है उनकी हम पाई पाई चुका देंगे।
न हमें स्वर्ग जाना है न मुक्ति लेनी है। 84 लाख योनियों के चक्र में एक बार भगवान से प्रार्थना करके इसलिए प्रवेश करेंगे कि इस जन्म में जिस जिसने जितना जितना उपकार हमारा किया हो, जितनी सहायता की हो, उसका एक एक कण ब्याज सहित हमारे उस 84 लाख चक्र में भुगतान करा दिया जाए। इच्छा प्रबल है कि अपना हृदय कोई बादल जैसा बना दे और उसमें प्यार का इतना जल भर दे कि जहां से एक बूंद स्नेह की मिली हो वहां एक प्रहर की वर्षा करते रह सकें। प्रेम तो पूज्यवर ने इतना लुटाया कि हर कोई उनका गुणगान करते नहीं थकता।
अनुदान वरदान भी कम नहीं दिए। यहां कुछ ऐसे प्रसंग दिए जा रहे हैं जब उन्होंने साधारण से व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा दिया। 25% निष्ठापूर्वक लगाते रहे। पालीताना भावनगर के श्री जंकभाई सोमपुरा एक मामूली मूर्तिकार थे। जब पूज्यवर से जुड़े तब मात्र 1400 रुपये में घर के 5 सदस्यों का जीवन निर्वाह मुश्किल से होता था। उन्होंने श्रद्धा भावना से अंशदान देना शुरू किया। पहले थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर महीने में एक दिन का वेतन देने लगे।
जैसे जैसे पूज्यवर के कार्य में उन्होंने धन लगाना शुरू किया, वैसे वैसे उनके घर में भी समृद्धि बढ़ने लगी।
वे एक ठेकेदार बन गए। अब जैन मंदिर बनाने के बड़े बड़े ठेके भी मिलने लगे। वे अपनी शुद्ध कमाई का 10% निकालने लगे। गायत्री शक्तिपीठ के निर्माण एवं व्यवस्था से लेकर पूज्यवर की पुस्तकें गुजराती भाषा में छपवाने एवं उनके प्रचार प्रसार में काफी धन लगाते रहे। फिर निश्चय किया कि मैं 25% लगाया करूंगा। इस प्रकार जितना लगाते उससे कई गुना गुरुजी उन्हें देते रहे। उन्हें बड़े बड़े मंदिरों के ठेके मिलने लगे।
वे लाखों रुपये गुरुजी के कार्य में खर्च करने लगे। एक बार उनके मन में कंजूसी के विचार आए, कोई और तो इतना पैसा लगाता नहीं है, मैं ही इतना पैसा क्यों लगाऊं। फिर उनके छोटे छोटे काम जो सहज होते जाते थे कभी पता ही नहीं चलता था अटकने लगे।
वे घबराए। फिर एक दिन आत्मा चेतना ने झकझोरा, तुमने निश्चय किया था 25% लगाने का। तुमने पूज्यवर को 25% का पार्टनर बनाया था, सो तुम्हारे काम में घाटा या बाधा कैसे आ सकती थी।
सब काम सहज होते रहते थे। अब तुम गुरुजी के साथ कंजूसी करोगे तो वे क्यों न करेंगे।
तुम अपने संकल्प से हट रहे हो, इसीलिए छोटे छोटे काम अटक रहे हैं। उन्होंने अपनी भूल सुधारी और पुनः 25% निकालने लगे। अब पुनः उनके सब काम सहज ढंग से होने लगे। सराहनीय निष्ठा एवं समर्पण। लखनऊ के श्री लोकनाथ रुद्रा जी की पूज्यवर के कार्यों में बड़ी अद्भुत निष्ठा एवं समर्पण भावना थी।
उन्होंने सन 1958 के सहस्रकुंडीय यज्ञ में भाग लिया था। वे गुरुजी के पास गए और कहा, गुरुजी,
मैं क्या सेवा करूं? तो गुरुजी ने कहा, तुम लंगर की व्यवस्था संभाल लो। तब वे बोले, गुरुजी, तब तो मैं यज्ञ नहीं कर पाऊंगा, सुबह से रात तक उसी में लगना पड़ेगा। गुरुजी बोले, बेटा,
वही असली यज्ञ है,
तुम्हें यज्ञ का संपूर्ण पुण्य उसी से मिल जाएगा। उस समय तक स्टो में केवल 20 बोरे चावल ही इकट्ठे हो पाए थे, सुबह सब निकाल लिए गए।
हमें चिंता हुई कि अभी तो पहला ही दिन है, आगे कैसे काम चलेगा।
गुरुजी से कहा तो गुरुजी बोले, चिंता मत करो, बस काम करते रहो। लोग यज्ञ करने आते, साथ में अपने घर से पोटली बांध कर लाते, शाम तक पूरा भंडार भर जाता। रोज ऐसा ही होता रहा। यज्ञ पूरा हो गया था, भंडार फिर भी भरा था। यज्ञ पूरा होने पर मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, अब मेरे लिए क्या आदेश है? तो गुरुजी ने कहा, बेटा,
मेरा काम करोगे
तो मेरी गायत्री को घर घर पहुंचा दो। मैंने गुरुजी से पूछा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? गुरुजी ने कहा, बेटा, इसके लिए अपना आपा ही उड़ेल दो। बेटा, जो भी छुट्टी मिले उसे हमारे काम में लगाना। वे कहते हैं, हमने गुरुजी का आदेश माना,
जो भी छुट्टी मिलती उसे पूरी निष्ठा से गुरुजी के काम में ही लगाते रहे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कभी छुट्टी में पत्नी को स्कूटर पर बिठाकर कहीं घुमाने ले गए हों।
शनिवार, रविवार और जो भी छुट्टी मिलती उसमें गुरुजी के कार्य हेतु लखनऊ शहर के मोहल्ले मोहल्ले गली गली में निकल जाते,
आसपास के गांवों में निकल जाते।
गुरुजी ने उन्हें इतना सम्मान दिया कि शांतिकुंज से जो भी कार्यकर्ता लखनऊ जाते उससे गुरुजी कहते, बेटा, वहां मेरे जैसी एक तड़पती आत्मा बैठी है, उससे जरूर मिलकर आना। जीवन के अंतिम समय तक बिस्तर पर रहते हुए भी गुरुजी के कार्य के प्रति उनके अंदर बड़ी तड़प बनी रहती थी।
सन 2008 में वे गुरुजी में विलीन हो गए।
पूज्यवर ने नए युग का नया इतिहास रचा है। गारियाधार भावनगर के कार्यकर्ता दामजी भाई एस पटेल पूज्यवर के कार्यों हेतु बहुत समर्पित थे।
वे बताते थे, सन 1999 में 87 वर्ष की उम्र में उन्हें सीवियर हार्ट अटैक हुआ था।
जल्दी से अस्पताल ले गए।
वहां डॉक्टरों ने नब्ज देखी तो पाया कि वे शरीर छोड़ चुके हैं।
उन्होंने बताया, जैसे ही मेरी मृत्यु हुई मैंने देखा मेरी चेतना सीधे पूज्य गुरुजी के पास गई। गुरुजी मुझे छाती से लगाकर खूब प्यार देने लगे।
उन्होंने कहा, बेटे, तुमने हमारा खूब काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे काम से। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, हमने आपका काम किया है तो उसका प्रमाण क्या है? बोले, बेटा,
प्रमाण मांगता है तो देख। उन्होंने एक मोटी इतिहास की पुस्तक आगे की।
वह इतिहास अभी लिखा नहीं गया है, पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्म स्तर पर वह नए युग का नया इतिहास लिख कर रख दिया है।
उसमें लिखा था, गारियाधार के सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता श्री दामजी भाई एस पटेल के संपूर्ण त्याग पुरुषार्थ की सारी कथा गाथाएं। मैं पढ़कर बहुत खुश हुआ। फिर गुरुजी कहते हैं, बेटा,
इस 99 के वर्ष में मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ, नया जीवन दान।
जा, तू हमारा काम करना। तुरंत मेरी चेतना वापस शरीर में लौट आई। कुछ पल ही बीते थे, मैं मृत से फिर जीवित हो उठा था। सभी आश्चर्यचकित थे। फिर इस उम्र में भी वे नाती पोतों के मोह में नहीं फंसे। जब तक जिए पूज्यवर का कार्य निष्ठापूर्वक घर घर जाकर करते रहे। लगभग 8 वर्षों के उपरांत उनकी मृत्यु सुखद रूप से हुई। 5% का पार्टनर बनाया। चेन्नई के तेजराज सिंह राजपुरोहित जी ने नई दुकान खोली। वन्निया शैल जीजी से बात की, जीजी, मैं नई दुकान खोल रहा हूँ टोपी की। जीजी ने कहा, तुम्हारी टोपी बहुत चलेगी, चिंता मत करना।
कमाई का एक अंश गुरुजी के चरणों में रखते जाना। उन्होंने कहा, हाँ जीजी,
मैंने गुरुजी को 5% का पार्टनर बनाया है। फिर पहले वर्ष ही उन्हें 20 लाख का फायदा हुआ, दूसरे वर्ष 40 लाख का। इस प्रकार तीसरे चौथे वर्ष भी उन्हें फायदा हुआ। वे निष्ठापूर्वक अपनी कमाई का 5% गुरुदेव के कार्यों हेतु निकालते रहते हैं।
उनका कार्य बढ़ता ही गया क्योंकि उन्होंने गुरुजी को पार्टनर जो बना दिया था, वे दुकान में मंदी कैसे होने देते। यह तो ब्याज भी नहीं है। जयपुर के श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी मिशन के कार्यों के लिए खूब अनुदान देते रहते हैं।
उनकी पत्नी से शांतिकुंज की एक कार्यकर्ता बहन ने चर्चा के दौरान कहा, आप तो खूब दान करते रहते हैं। इस पर उन्होंने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, हम क्या दे सकते हैं?
गुरुजी ने हमें जो दिया है यह तो उसका ब्याज भी नहीं है। ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं जो यह कहते हैं कि गुरुजी ने उन्हें दुकान, मकान, तरक्की, संतान, स्वास्थ्य आदि जिसकी उनके पास कमी थी वह दिया।
ऐसे औघड़दानी है पूज्य गुरुदेव।
उनके खेत में जिसने भी कुछ बोया है गुरुजी ने उसे हजार गुना करके लौटाया है।
13. उनकी चेतना आज भी सक्रिय है। सन 1990 में जहां पूज्य गुरुदेव अपने स्थूल शरीर को समेट रहे थे, वहीं सूक्ष्म शरीर से उनकी चेतना अति सक्रिय थी।
अनेकों परिजनों के पास वे सूक्ष्म शरीर से गए, उनसे बातचीत की, स्वप्नों में लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इतना ही नहीं, हजारों ऐसे लोगों से भी मिले सूक्ष्म शरीर एवं स्वप्न में जो उन्हें पहचानते भी नहीं थे।
उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान किया। बाद में वे लोग उनके चित्र को देखकर उन्हें ढूंढते हुए शांतिकुंज पहुंचे व सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। गुरुदेव ने लिखा था, ये कारवां रुकेगा नहीं और इसकी व्यवस्था भी वे स्वयं ही करते रहे हैं। इसी का परिणाम है कि उनके स्थूल शरीर छोड़ने के बाद भी युग निर्माण योजना का विस्तार 25 गुनी शक्ति से बढ़ता चला गया है।
क्रांतिधर्मी साहित्य की अनेकों पुस्तकों में उन्होंने लिखा है, जो कार्य इस शरीर से बन पड़ा है वह 1% ही है,
शेष 99% कार्य तो अदृश्य सत्ताओं ने ही किया है।
अपनी गोष्ठियों में उन्होंने आश्वासन दिया था, बेटा हम कहीं नहीं जा रहे,
यहीं रहेंगे,
अखंड दीपक में सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा में निवास करेंगे,
जब चाहो हमसे बात कर लेना। आज भी उनकी चेतना पहले की भांति सक्रिय है,
अपने हीरे मोतियों को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करती रहती है। आज भी परिजनों से मिलती है, कहीं स्वप्न में, कहीं ध्यान में, कभी कभी स्थूल में भी तो कभी विचार प्रवाह के रूप में। वह अपने बच्चों का मार्गदर्शन करती रहती है और ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ ऐसे ही कुछ प्रसंग हैं जिनमें गुरुदेव ने स्वप्नों आदि के माध्यम से परिजनों का समाधान किया है। मत जाना बेटी।
डॉक्टर
मंजू जीजी अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं कि मैंने सन 1972 में MBBS किया एवं सन 1979 में MD। मुझे गुरुदेव ने ही ढूंढकर स्वयं मिशन से जोड़ा है।
उड़िया अनुवाद हेतु बिना चिट्ठी पत्री के ही मेरे पास उन्होंने स्वयं मैटर भिजवाया था।
दूसरी घटना सन 1990 श्रद्धांजलि समारोह की है। मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आई थी।
एक हफ्ते रही, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद का मेरा रिजर्वेशन था, अतः माताजी से मिलने गई।
माताजी ने मुझे ऊपर गुरुजी के कमरे में प्रणाम करने भेजा।
वहां गई तो अचानक मुझे गुरुजी की स्पष्ट आवाज सुनाई दी, मत जाना बेटी।
मैं आवाज सुनकर बड़े पशुपेश में पड़ गई। मेरी टिकट हो चुकी है।
फिर सर्विस का क्या होगा? डॉक्टर साहब पति भी नाराज होंगे।
क्या करूं?
सोचते हुए नीचे उतरी, माताजी से बताया। तब माताजी ने कहा, तेरी इच्छा, देख ले बेटी। अब निर्णय पूर्णतया मेरे ऊपर ही था।
मन को कड़ा किया और जो होगा देखा जाएगा कहकर यही शांतिकुंज में रह गई।
उस समय मैं 7 महीने रही।
बाद में डॉक्टर
साहब श्री प्रसन्न कुमार जी स्वयं आए व मुझे लेकर गए।
उन्होंने कुछ नहीं कहा।
इसे मैं पूज्य गुरुदेव की ही कृपा मानती हूँ।
तू कहाँ रुक गया?
डॉक्टर जीरो शिवानंद साहू, शांतिकुंज।
1970 में जब मैं मेडिकल का छात्र था, उन्हीं दिनों पूज्य गुरुदेव द्वारा बिलासपुर के एक कार्यक्रम में मैंने दीक्षा ली थी।
डॉक्टर बनने के बाद हर यज्ञ आयोजन के साथ निःशुल्क चिकित्सा व उत्तम स्वास्थ्य पर गोष्ठियां लेने लगा और ज्ञानार्थ भी चलाता रहा। शांतिकुंज भी आता रहता था।
1991 में सितंबर माह में रात्रि लगभग 2:30 बजे निद्रा अवस्था में ही पूज्य गुरुदेव की आवाज अंतरात्मा में सुनाई पड़ी। लगा जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं, बेटा उठ,
चल आ जा।
कहाँ रुका हुआ है? तुझे तो किसी और काम के लिए भेजा गया है और तू कहाँ रुक गया? इस रूप में तो एक बार में एक की ही नाड़ी पकड़ पाता है, पर तू तो एक बार में एक साथ हजारों का इलाज कर सकता है। इस आवाज में मेरी नींद खुल गई। चारों ओर देखा, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। फिर सोने का प्रयास किया पर नींद ही नहीं आई। यह क्रम लगातार 3 दिनों तक चला।
मैंने माताजी को पत्र लिखा। जवाब आया, बेटा शांतिकुंज तो तेरा घोंसला है,
अपने घोंसले में जल्दी आ जा। तब मैं मध्य भारत पेपर मिल में मेडिकल एडवाइजर के रूप में कार्यरत था।
एक माह के अंदर ही वहां का हिसाब कर मैं 3 नवंबर 1991 को स्थायी रूप से शांतिकुंज आ गया।
तेरी माँ बुला रही है।
बहन श्रीमती उषा श्रीवास्तव, आजमगढ़, गुरुटोला, प्र।
बताती है कि मेरे जीवन में कई परेशानियां आईं। बहुत बार ऐसा आभास हुआ कि गुरुदेव ने साक्षात रूप में स्वयं आकर सहायता की। 1992 में मेरी तीनों बच्चियों को एक साथ बड़े दाने वाली चेचक निकली।
मेरी बड़ी बेटी कक्षा 10 में पढ़ती थी। उसकी बोर्ड की परीक्षा थी। 2-3 पेपर हो चुके थे। इसी बीच वंदनिया माताजी का समयदान हेतु पत्र आया। घर की परेशानी देखकर मेरे पति ने कहा कि मैं शांतिकुंज पत्र भेज देता हूँ कि घर में परेशानी है, बच्चे ठीक हो जाएंगे तब मैं समयदान में आऊंगा।
हम लोग बातचीत करके सोए ही थे कि पतिदेव ने देखा, गुरुजी आए हैं और कह रहे हैं, तेरी माँ बुला रही है और तू जाने से इनकार कर रहा है।
तू जा, समय दे, तेरे बच्चों को मैं देख लूंगा। मेरे पति समयदान के लिए चले गए, मैं अकेले ही बच्चों को, घर एवं बाहर के सब कामों को देखती। बड़ी बेटी की परीक्षा दिलवाने उसे कॉलेज भी ले जाती रही। गुरुजी की शक्ति का एहसास भी होता रहा और उनकी कृपा से मेरे बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो गए। बड़ी बेटी का हाई स्कूल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा।
ऐसे ही जीवन में अनेकों बार मुझे एहसास हुआ है कि गुरुजी ने अपने बच्चों से जो वादा किया है कि बेटा तू मेरा काम कर, तेरा काम मैं करूँगा, तो उसे वह समय आने पर निभाते भी हैं।
बस
हमारे विश्वास और समर्पण में कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए।
जब मैं स्वप्न के ऋषि को ढूंढती रही,
पटियाला की अनीता शर्मा बहन ने बताया कि बात मई जून 1990 की है।
अचानक ही हमारे परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे पति का बिजनेस फेल हो गया।
वे जिस भी काम में हाथ डालते उसी में घाटा हो जाता। घर में कलह क्लेश रहने लगा।
मैं रोज ही किसी न किसी ज्योतिषी के चक्कर काटने लगी। मैं बहुत परेशान थी।
एक रात को मैं रोते रोते सो गई तो सपने में क्या देखती हूँ कि एक ऋषि बहुत ही शांत मुद्रा में पहाड़ी पर बैठे हुए कुछ लिखते ही जा रहे हैं। मन हुआ कि उनसे पूछूं कि हमसे क्या गलती हुई है, हमारे ऊपर क्यों इतने कष्ट आ पड़े हैं, पर वह तो आंख ही नहीं उठाते, उनकी कलम ही नहीं रुक रही। काफी देर बाद जब उन्होंने लिखना छोड़कर सिर उठाकर मेरी ओर देखा तो मैंने उन्हें प्रणाम किया। वे बोले, सब क्या कहते हैं, तेरे पति का काम बांध दिया है। मैंने हाँ, मैं सिर हिलाया।
फिर वे बोले, तू कल मेरे पास आ जाना, इससे पहले कि मैं उनसे पूछती कि क्या क्या लेकर आऊं। वे फिर लिखने लगे। सुबह जब आंख खुली तो उन ऋषि का आभा मंडित चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा।
मैंने दैनिक उपासना के क्रम में गीताजी की समाप्ति के बाद उसमें लिखा गायत्री मंत्र पढ़ा और उस दिन से मैं गायत्री मंत्र का पाठ करने लगी।
फिर कहीं से गायत्री महाविज्ञान की किताब हाथ लगी तो उसमें से गायत्री चालीसा का पाठ रोज करने लगी। गायत्री माँ का पंचमुखी चित्र भी घर में स्थापित कर लिया।
पर वह ऋषि मुझे कहीं नहीं मिले।
मैं हर जगह, हर व्यक्ति में उस चेहरे को ढूंढती रहती। दिन, महीने और साल बीत गए। जिस दिन मेरे चालीसा पाठ की निश्चित संख्या पूर्ण हुई, मैं कुछ सामान खरीदने बाजार गई तो एक दुकान पर एक पर्चा लगा देखा। लिखा था, गायत्री यज्ञ एवं दीपयज्ञ का कार्यक्रम पटियाला के नौहरिया मंदिर में बसंत पंचमी 1994 को हो रहा है।
मैंने उस कार्यक्रम में भाग लिया।
आखिर में श्री शुक्ला जी, जो मुख्य वक्ता थे, ने सभी से देवस्थापना का आग्रह किया।
जब मैंने देवस्थापना चित्र लिया और उसमें गुरुदेव की फोटो देखी तो मैं हैरान रह गई।
यह वही ऋषि थे जो 4 साल पहले मुझे सपने में दिखाई दिए थे। मैं खुशी से नाच उठी।
मैंने आयोजकों से गुरुदेव के विषय में पूछा तो पता चला कि उन्होंने तो 1990 में शरीर छोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगा जैसे वर्षों के प्यासे को पानी तो मिला पर पीने से पहले ही छिन गया।
मेरी आंखों से बरबस अश्रुधारा बहने लगी। जब हम शांतिकुंज आए तो पता चला कि 1 महीने पहले ही माताजी गुरुसत्ता में विलीन हुई हैं।
मेरी पीड़ा का कोई अंत नहीं था। मेरे आंसू थम नहीं रहे थे।
मेरे पति नाराज भी हुए, बस भी करो, कितना रोओगी।
जब हम अखंड दीप दर्शन करने गए तो जीजी, डॉक्टर साहब वहीं पर बैठे थे। जीजी ने मुझसे पूछा, मैं इतना क्यों रो रही हूँ। मैं और भी फूट फूट कर रोने लगी और बताया कि मैं कितनी अभागी हूँ जो गुरुजी माताजी से मिल नहीं पाए।
तब जीजी ने कहा, वे तो अब भी तुम्हारे साथ हैं,
उन्हें अपने से अलग मत समझो, शांत हो जाओ,
वे ही तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं,
अब भोजन किए बिना मत जाना। उस क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे वास्तव में मुझे मेरे गुरुदेव मिल गए हैं। अब तो बस यही प्रार्थना है कि यह जीवन मन, वचन और कर्म से समर्पित ही रहे, तभी जीवन सार्थक है। मैं खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा।
डॉक्टर होडी भारद्वाज, ब्रह्मपुरी, मेरठ।
घटना सन 1994 की है।
द 20th of August 1994 को रिठानी निवासी ओम प्रकाश नाम का रोगी मेरे क्लिनिक पर आया। उसकी नाक से 3 दिन से निरंतर रक्त स्राव हो रहा था।
मैंने दवा दी व नाक की पट्टी इंटीरियर नेजल पैकिंग भी की, किंतु रक्त बहना बंद नहीं हुआ।
अगले दिन वही रोगी गंभीर अवस्था में फिर आया। एक्सरे कराया, रक्त की जांच कराई, तत्पश्चात ग्लूकोज इंजेक्शन तथा दवा दी और लगभग 6 मीटर लंबी पट्टी से नाक की पैकिंग की। 48 घंटे पश्चात द 23rd of August को सायंकाल 3 o'clock से 6 o'clock बजे के बीच उसे पुनः आने के लिए कहा। रोगी ओम प्रकाश नगरपालिका मेरठ में अल्पवेतन भोगी स्वच्छता कर्मचारी है। वह इतना साधन संपन्न नहीं था कि दिल्ली आदि के नामी गिरामी अस्पतालों में चिकित्सा कराता। बड़े विश्वास के साथ ENT विशेषज्ञ होने के नाते मेरे पास आया था।
मैं स्वयं उसकी ओर से बहुत चिंतित था।
द 23 अगस्त को दोपहर लगभग 3:45 का समय था। मैं विश्राम कर रहा था।
स्वप्न के धुंधलके में मैंने देखा कि वही ओम प्रकाश आ गया है।
पूज्य गुरुदेव उसका हाथ पकड़े हुए हैं। गुरुदेव बोले, इसकी पट्टी निकाल। मैंने चकित होकर कहा, गुरुदेव आप, इसकी नाक से रक्त स्राव की 99% आशंका है। वह बोले, मैं खड़ा हूँ, कुछ नहीं होगा, तू इसकी पट्टी निकाल।
स्वप्न में यह बात चल ही रही थी कि मेरे कंपाउंडर ने मुझे यह सूचित करते हुए उठा दिया कि क्लिनिक में मरीज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वप्न की अनुभूति को मन में लिए हुए जैसे ही मैं क्लिनिक में पहुंचा, मैंने देखा ओम प्रकाश भी बैठा हुआ है। उसने बताया कि वह लगभग 15 मिनट से बैठा हुआ है। मुझे अनुमान हुआ कि जब स्वप्न में गुरुदेव उसे लेकर आए थे उसी समय वह भी क्लिनिक में आया था। मैंने उसकी नाक की पैकिंग निकाली, नाक से एक भी बूंद खून नहीं आया। चलते समय वह मुझे पैसे देने लगा।
मैंने कहा, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि तुम कोई पुण्यात्मा हो। मेरे गुरुदेव ने तुम्हारा हाथ पकड़ा है।
तुम्हारे बहाने से मेरी गुरुदेव से बातें हुई।
मैं जब तक तुम्हारा इलाज होगा तुमसे पैसे नहीं लूंगा। आज भी वह पुनर्तः स्वस्थ है। गुरु सत्ता ने स्वयं उसका कष्ट दूर कर श्रेय मुझे दे दिया।
उस दिन के बाद मैं गुरुदेव के कार्यों के लिए और अधिक समर्पित हो गया तथा प्रतिदिन 4 घंटे का समय 10 बजे से 2 बजे गरीबों की निस्वार्थ चिकित्सा सेवा में लगाता हूँ। तब से अनुदानों की भी वर्षा होने लगी है, जिसे मैं नित्य अपने जीवन तथा अपने रोगियों पर अनुभव करता हूँ।
1999 में फोटो खींचा। बड़ौदा के श्री नारसिंह भाई परमार बताते हैं कि वे वसंत पंचमी 1999 में अपनी बेटी के साथ शांतिकुंज आए थे।
उनकी बेटी के मन में आया कि क्या अब गुरुजी यहाँ नहीं हैं? अब हम उन्हें कैसे मिल सकेंगे,
और इस भाव को लेकर वह बहुत अधिक व्याकुल हो रही थी। उसे गुरुदेव के दर्शनों की प्रबल इच्छा थी। वे प्रवचन के बाद अखंड दीप दर्शन हेतु लाइन में लगे थे। जब तक उनका नंबर आया तब तक दोपहर की साधना का समय हो चुका था। 15 मिनट के लिए अखंड ज्योति के दर्शन के कपाट बंद हो गए। 15 मिनट बाद जब कपाट खुले और वे सीढ़ियों पर चढ़े तो जहां गुरुजी माताजी के चरणों का चित्र लगा है वहां उन्हें पूज्य गुरुदेव उतरते हुए दिखाई दिए। वे ऊनी टोपी सिर पर लगाए हुए थे।
हम उन्हें देखकर हतप्रभ रह गए। एक क्षण को लगा क्या हम सत्य देख रहे हैं।
इतने में पूज्यवर ने मेरी बेटी से कहा, बेटी मैं यहीं रहता हूँ,
केवल दुनिया वालों को दिखाई नहीं देता, तू चाहे तो मुझे अपने कैमरे में कैद कर डाल। उनके ऐसा कहने पर मैंने भी उसे कहा, बेटा फोटो खींच लो। उसने फोटो खींच लिया। वे फोटो दिखाते भी हैं। उस फोटो में लोगों की लाइन ऊपर प्रणाम हेतु जा रही है और गुरुजी आशीर्वाद की मुद्रा में नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। नारसिंह भाई का कहना है कि मुझे गुरुजी के साथ सातों ऋषि भी दिखाई दिए पर वे फोटो में नहीं आए।
जब हमारी गाड़ी 40 फुट गहरे गड्ढे में थी, श्री ओंकार पाटीदार जी सन 1970 के दशक में मिशन के संपर्क में आए और सन 1982 में स्थायी रूप से शांतिकुंज आ गए। हम लोग श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के साथ कनाडा में द 23 जून 2000 को कार्यक्रम समाप्त कर रात्रि लगभग 12:00 बजे ओटावा से मॉन्ट्रियल लौट रहे थे। गाड़ी में श्री जमुना साहू, श्री राजकुमार वैष्णव एवं श्रद्धेय डॉक्टर साहब बैठे थे। गाड़ी को छगन भाई पटेल चला रहे थे। दो बहिनें भी गाड़ी में थी। गाड़ी बिल्कुल नई थी। 100 किलोमीटर की गति से घनघोर घने जंगल में दौड़ती हुई गाड़ी ने आधा रास्ता तय कर लिया था। अचानक छगन भाई पटेल को झपकी आई और देखते ही देखते गाड़ी एकाएक सड़क से नीचे उतर गई।
घरघराहट की जोर से आवाज आने लगी।
गाड़ी उछलते उछलते गेंद की तरह नीचे जा रही थी। घनघोर जंगल में बड़ी बड़ी घास के बीचों बीच गाड़ी खड़ी हो गई। इंजन के बोनट से धुआं आने लगा। दूसरी गाड़ी के परिजन आवाज देकर हमें गाड़ी से बाहर आने को कह रहे थे। हमारी गाड़ी 40 फुट गड्ढे में थी और ऑटोमेटिक दरवाजे खुल नहीं रहे थे। श्रद्धेय डॉक्टर जीरो साहब हम सबको हिम्मत बंधा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने ही दरवाजे खोले।
बाहर आकर देखा कि गाड़ी के पास ही गहरा नाला बह रहा है और सामने पत्थर है।
कनाडा जैसे देश में इतनी गति से दुर्घटना सुनिश्चित थी। श्रद्धेय डॉक्टर जीरो साहब ने बताया उन्हें अनुभूति हुई कि दो विशालकाय हाथ सहारा देकर गाड़ी को रोक रहे हैं। गाड़ी बिना पलटे टकराए बगैर नुकसान के स्वयं रुक गई और उस महाकाल की सत्ता ने सभी को नया जीवन प्रदान किया। बड़ी एकादशी को दरवाजा खोलेंगे। श्रीमती मणिदास शांतिकुंज सुल्तानपुर 0+0 के श्री श्याम सुंदर सिंघल जी शांतिकुंज में कई वर्षों तक रहे। सन 2003 में उनकी पत्नी 40% जल गई थी।
जलने की असह्य पीड़ा होती है,
फिर भी वे शांतिकुंज चिकित्सालय में धैर्यपूर्वक सब सहती रहीं। इतने कष्ट में भी वह प्रतिक्षण गायत्री मंत्र जपती रहती। बीच बीच में कराहती भी थी, पर सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बनी रही।
कभी कभी वे बेहोश भी रहती।
एक दिन जब हम लोग उनके पास बैठे थे तो वे बोली, गुरुजी माताजी आए थे। उन्होंने कहा है, बेटी
अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ है।
3-4 दिन बाद बड़ी एकादशी को हम तुझे लेने आएंगे। अभी 3-4 दरवाजे खोले हैं, शेष दरवाजे उसी दिन खोलेंगे। और सचमुच ही अपने कथनानुसार बड़ी एकादशी को उन्होंने शरीर त्याग दिया।
उस पल हमें वे क्षण याद आ गए जब गुरुदेव व्यक्तिगत चर्चा में व प्रवचनों में कार्यकर्ताओं से कहा करते थे, बेटा तेरे अंतिम क्षण में हम तेरे साथ रहेंगे व तुझे भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। और वास्तव में समय आने पर अनेकों परिजनों को अनेकों प्रकार से वे इसका आभास कराते रहते हैं। मुझे उसे बचाना है।
राजनांदगांव के श्री जुगल किशोर लड्ढा जी बताते हैं कि 2003 में उनके शहर में नवचेतना शिखर यज्ञ था।
हम लोग उसकी तैयारी में लगे थे।
हमारा संकल्प था कि सुबह पहले 2 घंटा गुरुदेव का काम करेंगे, तब अपनी दुकान आदि खोलेंगे।
इस समय में हम लोग प्रचार करने व चंदा आदि लेने का काम करते थे। एक दिन सुबह मेरे मन में आया कि आज सुबह न जाकर शाम को चलेंगे।
मैं दुकान खोलने ही जा रहा था कि श्री यशवंत भाई ठक्कर जी का फोन आ गया। मैंने कहा, शाम को चलेंगे। इस पर वे बोले कि हमारा संकल्प तो सुबह का है,
कम से कम 2 घर में तो जाना ही है।
मैंने कहा, ठीक है,
मैं आता हूँ। और दुकान का शटर जो आधा खोला था बंद करके मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और उनके घर की ओर चल दिया।
रास्ते में शमशान घाट पड़ता था, उस तरफ ज्यादा भीड़ नहीं रहती, इसलिए मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। जैसे ही मैं शमशान घाट के सामने से निकल रहा था कि एक साइकिल सवार ने सड़क क्रॉस किया। सामने से एक व्यक्ति हीरोपुक पर तेज स्पीड से आ रहा था।
साइकिल सवार के चक्कर में हम दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाए और आपस में टकरा गए। मैं इतना ही देख पाया था कि सामने वाले व्यक्ति को काफी चोट आई है। इतने में मुझे ख्याल आया कि मैं तो गुरुजी का काम करने जा रहा हूँ, मुझे चोट आई होगी तो मेरे काम का क्या होगा।
मैंने गुरुजी का ध्यान किया और गायत्री मंत्र जपने लगा। मैं भी गिर पड़ा था, मोटरसाइकिल मेरे ऊपर थी, मुझे चक्कर भी आ रहा था।
इतने में हमारे आसपास कुछ लोग इकट्ठे हो गए।
उन्होंने हीरोपुक सवार को रिक्शा पर बिठाया और अस्पताल भेज दिया। उसे काफी चोट लगी थी, मुझे भी उठाकर पानी पिलाया, मेरे कपड़े आदि व्यवस्थित किए, मोटरसाइकिल को खड़ा किया।
जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने देखा मेरे कपड़े फट गए हैं, पर मुझे खास चोट नहीं आई है।
मैंने खुद को व्यवस्थित किया और फिर यशवंत भाई के घर चला गया। उन्होंने मेरी हालत देखी और सारा वृतांत सुना तो कॉफी पिलाने के बाद बोले, आज रहने देते हैं, कल चलेंगे। तो मैंने कहा कि अब मैं ठीक हूँ,
आ ही गया हूँ तो काम करके ही लौटूंगा। हम दोनों ने उस दिन 4-5 घरों में से चंदा लिया। जब मैं घर लौटा तो मेरे कपड़ों की हालत देखकर सबने प्रश्नों की झड़ी लगा दी।
मैंने सब हाल बताया।
मेरे छोटे भाई को जब पता चला तो वो बड़ी हैरानी से बोला, अरे
भैया का एक्सीडेंट हो भी गया। उसकी बात सुनकर सबको बड़ी हैरानी हुई। वह दौड़ा दौड़ा मेरे पास आया, हैरानी से मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, आपका एक्सीडेंट हो भी गया। सुबह 5 बजे ही तो गुरुजी मेरे सपने में आए थे और मुझे बोले कि आज जुगल का एक्सीडेंट होने वाला है,
मुझे उसे बचाने जाना है क्योंकि वह मेरा काम करता रहता है।
मैं आपको बताने ही वाला था, पर मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा।
श्री जुगल किशोर लड्ढा जी कहते हैं कि उनके पास गुरुजी के इतने संस्मरण है कि उनकी एक डायरी भरी हुई है।
यह जीवन ही उनका है। श्री रामप्रकाश जेसलानी, श्रीमती शालिनी जेसलानी।
कानपुर के श्री रामप्रकाश जेसलानी जी कहते हैं कि मैं सन 1995 में गायत्री परिवार के संपर्क में आया।
सन 1998 में मुझे विचित्र प्रकार की तकलीफ हुई।
मुझे अचानक ही खून की उल्टियां होने लगी। मेरा पूरा परिवार घबरा गया कि अचानक यह क्या हो गया। दिन में 4-5 बार मुझे खून की उल्टी हो जाती थी।
मेरा मुंह कड़वा होता और एकाएक लगभग आधा गिलास खून निकल जाता।
मेरी तकलीफ देखकर हमारे तीनों बच्चों ने पूजा घर में अनवरत गायत्री महामंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। यह क्रम चलते हुए जब 3 दिन हो गए तो मुझे लगने लगा कि अब शायद मेरा अंतिम समय आ गया है। मैंने पत्नी से कहा कि मुझे अस्पताल में भर्ती करा दो, शायद खून की जरूरत पड़े।
हमने हमारे पड़ोसी मित्र जो कि डॉक्टर हैं, उनसे चर्चा की। उन्होंने मेरे खून की जांच की, मेरा हीमोग्लोबिन ठीक था।
वह हैरान होकर कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, इतने दिन से खून की उल्टी हो रही है और हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। मुझे खून की उल्टियां बराबर हो रही थी, सो अगले दिन हम दिल्ली में एम्स अस्पताल में दिखाने गए।
इस बीच हमारे घर पर अखंड जप भी चलता रहा।
कानपुर के गायत्री परिवार के बहुत से भाई बहनों ने अपने घर पर ही मेरे लिए जप प्रारंभ कर दिया। शक्तिपीठ पर भी मेरी जीवन रक्षा के लिए जप होने लगा। मुझे एम्स में भर्ती करा दिया गया।
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डॉक्टर ने मेरा ब्रोंकोस्कोपी टेस्ट किया।
सप्ताह भर बाद रिपोर्ट आई, पर रिपोर्ट के आने के बाद मुझे दोबारा टेस्टिंग के लिए बुलाया गया और दोबारा मेरे टेस्ट हुए। दोबारा टेस्ट करने का कारण पता करने पर मालूम हुआ, दोनों ही बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल थी।
वहां के सबसे बड़े डॉक्टर ने मेरी पूरी रिपोर्ट पर एम्स के बड़े डॉक्टरों की मीटिंग बुलाकर चर्चा की, फिर मुझसे मेरी सारी तकलीफ के बारे में चर्चा की। मेरी सारी जांच रिपोर्ट नॉर्मल थी, अतः डॉक्टरों ने मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। लगभग 24 दिन तक मुझे खून की उल्टियां आती रहीं, फिर अकस्मात ही दिन खून की उल्टियां बंद हो गईं। किंतु मेरी सब रिपोर्ट नॉर्मल कैसे आई, इसका पूरा पूरा श्रेय मैं पूज्य गुरुदेव को देता हूं।
क्योंकि जैसे ही मेरी तबीयत बिगड़ी तो हमारे परिवार में सबने मिलकर अखंड जप प्रारंभ कर दिया। जेसलानी जी कहते हैं कि मैं अंतर हृदय से समझ रहा था कि जब गुरु कृपा हो गई तो असंभव भी संभव हो जाता है।
उसके बाद मैं सक्रिय हो गया। जो कोई भी नया ऑफिसर कानपुर आता, मैं उन्हें दो गायत्री मंत्र की कैसेट देता था,
एक घर में सुनने के लिए, दूसरी वाहन में।
कुछ वर्षों में समर्पण का भाव परिपक्व हुआ और अपनी पशुपति बिस्किट की पूरी फैक्ट्री बंद करके फरवरी 2006 में हरिद्वार शांतिकुंज में सेवा के लिए आ गया।
सभी मित्रों संबंधियों ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, दिमाग सरक गया है क्या,
जो तुम अपनी जमी जमाई फैक्ट्री बंद कर रहे हो। लेकिन मेरी अंतरस्थिति को कोई कहां समझ सकता था। फरवरी सन 2006 में हम हरिद्वार आ गए और शांतिकुंज में अपना पूरा समय देने लगे।
दो तीन माह बाद हम अपनी कंपनी के सेल टैक्स इनकम टैक्स के मामले निपटाने के लिए कानपुर गए।
द 5th of June 2006 को हम अपने सब मामले निपटाकर अपनी कार द्वारा सपत्नीक हरिद्वार लौट रहे थे कि दिन में 12:30 बजे के लगभग अलीगढ़ से 15 किलोमीटर पहले जशरतपुर कस्बे में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया।
इस जबरदस्त एक्सीडेंट में मुझे स्पष्ट अनुभव हुआ कि हमें पूज्यवर ने ही नया जीवन दिया है। मैं गाड़ी चला रहा था और मेरी पत्नी मेरे बगल में बैठी थी।
एक टाटा सफारी गाड़ी तीव्र गति से सामने आ रही थी। उस गाड़ी ने हमारी गाड़ी में जोरदार टक्कर मारी। हमारी गाड़ी एकदम पिचक गई और हम दोनों को काफी गंभीर चोटें आईं। टाटा सफारी का ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया। मैं तो एक्सीडेंट होते ही बेहोश हो गया।
मेरी पत्नी को कुछ कुछ होश था, पर हम दोनों गाड़ी में बुरी तरह फंस गए थे। अलीगढ़ जिले में उस दिन सांप्रदायिक दंगों की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ था।
सड़क पर एकदम सन्नाटा था, न कोई आदमी कहीं नजर आ रहा था, न ही कोई गाड़ी आ जा रही थी।
इतनी देर में मेरी पत्नी ने देखा कि पूज्य गुरुदेव उनके पास खड़े हैं।
गुरुदेव को वहां देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई और अर्धमूर्छित सी अवस्था में वह गुरुदेव को बस देखती रही।
उसके आसपास जो कुछ हो रहा था वह सब देख पा रही थी। उसने देखा कि गुरुदेव कार के बाहर लगातार टहल रहे थे। इतने में दो व्यक्ति आए और उन्होंने हम दोनों को हमारी कार का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। मेरी जेब में लगभग 20,000 रुपए
थे, वो भी उन्होंने निकाले। मैं 3 सोने की अंगूठियां पहने हुए था, वे उतारी।
फिर उन्होंने मेरी पत्नी के हाथों से चूड़ियां एवं अन्य गहने उतारे। साथ ही मेरी पत्नी से कहा कि बहन, किसी भी बात की चिंता मत करना, आपका एक भी रुपया व गहना गुम नहीं होगा। कुछ और भी है तो हमें दे दो।
आपका कुछ भी सामान गुम नहीं होगा, इस बात को उन्होंने 3-4 बार दोहराया ताकि मेरी पत्नी को विश्वास हो जाए।
मेरी पत्नी ने आंखों से इशारा करके बताया कि मेरे पति की ड्राइविंग सीट के नीचे सामान रखा है, उसमें एक अखबार में लपेटे हुए 4,00,000 रुपए
रखे थे। उन दोनों ने वह धन भी निकाल लिया। मेरी पत्नी का पस भी संभाला। गहने और पैसे मिलाकर लगभग 1,00,000 रुपए की संपत्ति थी।
फिर उन्होंने हम दोनों को अपनी गाड़ी में लादा।
उस समय तक पूज्य गुरुवर बराबर मेरी पत्नी को हमारे पास खड़े दिखाई देते रहे। जब हम लोगों को वह व्यक्ति गाड़ी में लाद कर चल दिए तो गुरुवर अंतर्ध्यान हो गए। गुरुवर के अंतर्ध्यान होने तक मेरी पत्नी ने उन्हें देखा।
उसके बाद वह कब बेहोश हो गई उसे नहीं पता। उन लोगों ने हमारे मोबाइल से ही हमारे सब रिश्तेदारों व मित्रों को हमारे एक्सीडेंट की सूचना भी कर दी। मेरी दिल्ली वाली बेटी ने उन लोगों से कहा कि हम आपके बहुत बहुत ऋणी हैं। मैं तुरंत पहुंच रही हूं, पर मुझे पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे, तब तक आप कृपा कर वहीं रहिएगा,
हमसे मिले बिना नहीं जाइएगा।
वह लोग बोले कि हम लोग मुस्लिम हैं और यहां दंगा चल रहा है, हम दोनों पुलिस के किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। मेरी बेटी ने जब बहुत अनुनय विनय किया तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे आने तक हम तुम्हारे मम्मी पापा की देख खटाव भाल कर रहे हैं, पर हम तुमसे मिलेंगे नहीं। इसके बाद उन लोगों ने हमारा सब सामान, गहने व पैसे आदि नर्सिंग होम के डॉक्टर को दे दिए व कहा, डॉक्टर साहब, यह इन दोनों घायलों की अमानत है। इनके बेटी दामाद कुछ देर में आने वाले हैं, आप कृपा कर सब सामान उन्हें दे दीजिएगा। जैसे ही हमारी बेटी व दामाद नर्सिंग होम में पहुंचे, वैसे ही वे लोग दूसरे दरवाजे से निकल गए। हमारी बेटी व दामाद ने उन्हें बहुत खोजा, पर वे कहीं नहीं मिले। हमें आज भी यही आभास होता है कि वह दोनों व्यक्ति और कोई नहीं पूज्य गुरुदेव के भेजे देवदूत ही होंगे, जिन्हें पूज्यवर ने हमें अस्पताल तक पहुंचाने का माध्यम बनाया। इसीलिए वे हमारे बच्चों के पहुंचते ही वहां से चले गए।
कोई सामान्य व्यक्ति होते तो हमारे बच्चों से अवश्य मिलते। शाम तक हमारे सभी परिजन अलीगढ़ पहुंच गए और हमारी यथोचित चिकित्सा व्यवस्था हो गई।
हमें इतनी गंभीर चोटें लगी थीं कि हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी,
परंतु गुरुदेव ने हमारे चारों ओर सुरक्षा चक्र बना दिया था, तो भला मृत्यु कैसे पास फटकती।
हम दोनों को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
28 दिन तक वहां भर्ती रहे।
पत्नी और मेरे दोनों के पैरों में रॉड डालनी पड़ी। कई ऑपरेशन हुए। हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े प्लेट में रखकर जोड़े गए, फिर वह प्लेट अंदर डाली गई। कई महीने हमें स्वस्थ होने में लग गए।
द 1st of June 2008 से मैंने फिर अपना समयदान शांतिकुंज में प्रारंभ कर दिया। अपने इस जीवन को मैं पूज्य गुरुदेव का अनुदान ही मानता हूँ। शेष जीवन उनके कार्य में ही लग जाए, बस यही गुरुवर से नित्य प्रार्थना करता हूँ।
गोली पीछे चली जाएगी।
श्रीमती उर्मिला श्याग, सुनीता किकरवाली, फाजिलका, पंजाब। उर्मिला बहन जी ने बताया कि श्री मनमोहन जी श्याग की वह दूसरी पत्नी है।
पहली पत्नी से उन्हें 3 संतानें हैं,
1 बेटी, 2 बेटे।
बेटी की वे शादी कर चुके थे। मेरे पति की 300 किले जमीन है। दामाद के मन में उनकी जायदाद को लेकर लालच आ गया था। एक दिन उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि इनके दोनों बेटों की शादी तो मैं होने ही नहीं दूंगा।
यदि तुम मेरे साथ मिल जाओ तो मनमोहन जी को मैं देख लूंगा।
सब पैसा हम दोनों लोग आपस में बांट लेंगे।
मैंने उसको डांट लगाई और भगा दिया।
पति के आने पर उसकी सारी योजना उन्हें बता दी। उन्हें जब यह बात पता चली तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ और ससुर दामाद की आपस में थोड़ी कही घटाव सुनी भी हो गई। विक्रम इस बात से मुझसे बहुत नाराज था, पर हमने उससे यह आशा नहीं की थी कि वह इस हद तक गिर जाएगा। यह घटना 4 जून 2007 की है।
विक्रम शाम को 4 बजे शराब पीकर मेरे घर आया।
उसके दोनों हाथों में 2 पिस्टल थी। मैं हॉल में बैठी थी। उसने दरवाजे से ही 3 गोलियां मेरे ऊपर चलाईं। एक गोली मेरे पेट के आर पार हो गई,
एक पेट के अंदर नाभि के नीचे धंस गई और एक गोली दिल के वॉल्व के पास लगी। सामने दीवार पर गुरुदेव का चित्र लगा था।
जैसे ही उसने मुझ पर हमला किया, मेरी निगाहें उस चित्र से टकराईं और मैंने कहा, हे गुरुदेव मुझे बचाओ। यह कहते ही मेरी आंखें बंद हो गईं।
मुझे गुरुदेव के स्पष्ट दर्शन हुए और गुरुदेव आशीर्वाद मुद्रा में दिखाई दिए। बोले, बेटा तुझे कुछ नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मुझे तुरंत लुधियाना के DMC अस्पताल ले जाया गया।
लुधियाना पहुंचने में हमें 4 घंटे लगे। इस बीच मुझे पूरा होश था। मैं सबसे बात कर रही थी और सबको धीरज बंधा रही थी कि मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे अंदर पता नहीं कहां से ताकत आ गई थी। मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था।
हॉस्पिटल में पहुंचने पर डॉक्टरों ने तुरंत पेट का ऑपरेशन करके गोली निकाल दी,
लेकिन हार्ट के ऑपरेशन के लिए साफ मना कर दिया। कहा कि गोली वॉल्व के बिल्कुल पास है, ऑपरेशन करने से खतरा है, इसे हम नहीं कर सकते।
मैं 4 दिन बेहोश रही।
डॉक्टर हर 3rd घंटे में मेरे हार्ट का एक्सरे लेते थे कि क्या स्थिति है।
5वें दिन मुझे होश आया।
जब मुझे पता चला कि दिल के पास लगी गोली तो वहीं पर है, अभी संकट टला नहीं है। यह जानकर कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मुझे बहुत निराशा हुई। मैं रात भर रोती रही और गुरुजी से प्रार्थना करने लगी कि इससे तो अच्छा था मैं उसी समय मर गई होती। मेरी छोटी सी बेटी है, उसका क्या होगा।
रोते रोते पूरी रात बीत गई। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुबह 4 बजे मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। वे मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, बेटा कुछ नहीं होगा, गोली पीछे चली जाएगी।
चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुबह जब डॉक्टर
चेक करने आए तो डॉक्टर
ने पीठ में देखा कुछ सूजन है, एक जगह थोड़ी फूल गई है।
डॉक्टर
ने छू कर देखा, गोली अपनी जगह से खिसक कर पीठ में चमड़ी की ऊपरी परत में आ गई थी।
डॉक्टर ने तुरंत नर्स को बुलाया और वहीं बिस्तर पर ही एक हल्का सा चीरा लगाकर गोली को निकाल दिया। डॉक्टर
हैरान थे, ऐसा कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों की पूरी टीम ने मुझे घेर लिया।
दोबारा एक्सरे लिया गया। पहले के सब एक्सरे को वे बार बार देख रहे थे।
रात्रि 3 बजे भी जो एक्सरे लिया गया था उसमें भी गोली अपनी जगह पर ही थी। सब हैरान थे कि अचानक सुबह तक गोली इतनी पीछे कैसे पहुंच गई। DMC
हॉस्पिटल की पूरी टीम बैठी।
फिर से उन्होंने कई एंगल से एक्सरे करके देखा, पर कुछ रहस्य समझ नहीं आया।
फिर मुझसे बोले, आश्चर्य है,
हमारी समझ से बाहर है कि ऐसा कैसे हो गया। आप बहुत भाग्यशाली हैं। तब मैंने उन्हें गुरुदेव के दर्शनों के बारे में बताया।
मेरे सिरहाने गायत्री महाविज्ञान रखा था।
अस्पताल का हेड डॉक्टर, क्या मैं इसे देख सकता हूँ, कहकर उसे मुझसे मान कर ले गया। अगले दिन वह पुनः आया और मुझे उस पुस्तक का पैसा यह कहकर दे गया कि इसे तो मैं अपने पास रखूंगा, आप और ले लेना।
उर्मिला बहन भावुक होकर कहने लगी, मैं तो मर गई थी।
मेरा यह जीवन गुरुजी का दिया हुआ जीवन है। कौन कह सकता है गुरुदेव नहीं है।
वे आज भी हैं, मैं इसका प्रमाण हूँ। उर्मिला बहन जी ने गोली के निशान भी दिखाए। जीवन सार्थक जीना चाहिए। श्री रमेश्वर कुमार निर्मलकर रहता, रायपुर के नए जुड़े परिजन हैं।
वे सन 1991 से ड्राइविंग का काम करते रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत घटिया हो गया था।
जीवन में शराब, मांस आदि अनेक विकार जुड़ गए थे। मैं अधिकांश घर से बाहर ही रहा, देश भर में भटकते हुए ही जीवन कटा।
घर पर तो मैं बस पत्नी बच्चों के लिए पैसा भेजता रहता था।
घर जाता तो पत्नी आवेशित होती, झगड़ा करती, ढेरों उलाहने देती।
मेरे जीवन में शांति नहीं थी। पत्नी के झगड़े व तानों से तंग आकर मैं आत्महत्या करने का विचार करने लगा। मुझे अपने जीवन से घृणा होने लगी थी।
फांसी लगाकर या विष खाकर आत्महत्या करने का विचार बार बार मन में आता। एक दिन पत्नी ने भोजन तो परोसा, पर खूब खरी खोटी भी सुनाए।
मन में आया, अब तो बिल्कुल जीना ही नहीं है। भोजन सम्मुख रखा था, पर खाने का मन नहीं हो रहा था।
आत्महत्या का विचार प्रबल होता जा रहा था।
यह घटना दिसंबर माह 2010 की है। थाली मेरे सामने परोसी रखी थी और मैं आत्महत्या के विचारों में खोया हुआ था।
तभी मैंने देखा, पूज्य गुरुदेव वंदनीया माताजी सम्मुख आकर बैठ गए हैं।
मैं हैरान रह गया।
वे मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटा भोजन क्यों नहीं करता, चल भोजन कर। फिर प्रेरणा देते हैं कि बेटे, यह जीवन गंवा देने के लिए नहीं है, जीवन सार्थक जीना चाहिए। मैं जब तक भोजन करता रहा, मुझे बराबर उनकी उपस्थिति का एहसास होता रहा।
आत्महत्या का विचार मन से तिरोहित हो गया और उसी क्षण से मेरा जीवन बदल गया।
जीने की उमंग पैदा हो गई और उसके बाद मैंने सब दुर्व्यसन छोड़ दिए। गुरु सत्ता का परिजनों से आश्वासन एवं अनुरोध।
इन पंक्तियों में परम वंदनीय माताजी ने अपने पुत्रों के लिए अपने उद्गार को केवल लेखनी ही नहीं दी, अपितु अपनी आवाज भी दी है। इस गीत के एक एक शब्द में वंदनीय माताजी ने अपने प्राण फूंके हैं।
पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी ने अपने कार्यकर्ताओं को अपने अंग अवयव कहा है। प्रस्तुत गीत में उसी भाव को और पुष्ट करते हुए गुरुसत्ता ने आश्वासन दिया है कि दिए हुए उत्तरदायित्वों को पूरा करने के क्रम में जब भी मार्गदर्शन, शक्ति एवं सहायता की आवश्यकता अनुभव होगी, परिजन उनका स्पष्ट संरक्षण और मार्गदर्शन भरा साथ अनुभव करेंगे।
हमारी श्रद्धा और समर्पण जितना गहरा होगा, उतनी ही सघनता से हमें यह अनुभूति होगी कि वास्तव में गुरुसत्ता हमारा उतना ही ध्यान रखती है जितना कोई अपने शरीर के एक एक अंग का।
जब स्वयं को विकल तुम अनुभव करोगे, तब हमारा स्नेह देता साथ होगा। आर्त स्वर में जब कभी कुछ भी कहोगे, घाव पर मरहम लगाता हाथ होगा। कष्ट या कठिनाइयों से तुम न डरना, भंवर से मझधार से संघर्ष करना।
जीत होगी जिंदगी की हर दगा में।
लोक जीवन में नया उत्साह भरना। पुत्र तुमको जब अकेलापन खलेगा, माँ पिता का कवच भी तब साथ होगा। हम तुम्हारी श्वास में ऊर्जा भरेंगे,
खून की हर बूंद तक नव प्राण देंगे।
यह मधुर संबंध जन्मों तक निभेगा, सूक्ष्म में रहकर तुम्हें वरदान देंगे। जब कभी हारे थके अनुभव करोगे, पीठ को थपकी लगाता हाथ होगा। आसे तुम हर दुखी को प्यार दोगे, आंसुओं को तुम नई मुस्कान दोगे।
जो भटकते हैं यहाँ जीवन समर में,
दीप बनकर ज्योति का अनुदान दोगे। जब तुम्हारी ज्योति डगमग सी दिखेगी, दिव्य आंचल का सहारा साथ होगा। साधको श्रम बिंदु जब भू पर गिरेंगे, तब धरा पर प्यार के उपवन खिलेंगे। उस सुवासित शांति के वातावरण में इस जगत को स्वर्ग जैसा सुख मिलेगा। कार्य जब उत्साह से पूरा करोगे, शक्ति आशीर्वाद देता हाथ होगा। पुत्र तुम मजबूत कंधे हो हमारे, अंग अवयव हो तुम ही दो नयन प्यारे।
भार तुम पर आज गुरुतर सौंपते हैं।
पुनर्तः निश्चिंत तुम सबके सहारे, शक्ति की तुमको कमी अनुभव न होगी, ब्रह्मबल निश्चय तुम्हारे साथ होगा। एक थे पहले, पुनः अब एक होंगे, द्वैत के बंधन को हम अब तोड़ देंगे। सूक्ष्मता को देखकर आहें न भरना, हम तुम्हारे थे तुम्हारे ही रहेंगे। नयन मुंदे ध्यान में आओ कहोगे, दर्श देता प्रखर सविता पुंज होगा। गायत्री तीर्थ शांति कुंज, हरिद्वार उत्तराखंड भारत, फोन 01334260602 260309 260328 fax -260866